अब अगले भाग में हमें शंख घंटी पूजन, कलश पूजन और पृथ्वी और आपतत्व पूजन करना है। इसके लिए हमें जल से भरा हुआ कलश, शंख, घंटी, जलाई हुई अगरबत्ती, जलाया हुआ दीप, सुपारी, थोड़े सिक्के, गंध, अक्षत, तुलसी पत्र, दूर्वांकुर, बेल के त्रिदल पत्ते और हल्दी कुमकुम, यह चीजों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हमें आम के वृक्ष की दो टहनियों की भी आवश्यकता होगी। अगर आम की टहनियां ना मिले तो उसकी जगह पर तांबूल के पत्ते, और अगर तांबूल के पत्ते भी ना मिले तो उसके जगह पर प्लास्टिक के पत्ते भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। अब हम शंख घंटी पूजन, कलश पूजन और पृथ्वी और आपतत्व का पूजन प्रारंभ करेंगे।
अब हम कलश पूजन करेंगे। जिस कलश में रखे हुए जल का हम अब तक उपयोग करते आ रहे हैं उसी कलश का अब हम पूजन करेंगे। अगर घर के मंदिर में शंख रखा है तो उस शंख का बाद में घंटी का भी पूजन करना है और फिर दीप पूजन करना है। सर्वप्रथम हम कलश पूजन करेंगे। उसके लिए जो जल का कलश है उसके मुख पर अपना दाया पंजा रखकर हमें सब देवी देवताओं का और सभी पवित्र नदियों का आवाहन करना है, क्योंकि गंगा, नर्मदा आदि पवित्र नदियों का जल पूजा के समय लाना संभव नहीं है। तो मंत्रों से कलश में जो पानी है उसे ही पवित्र करके कलश में गंगा जी, नर्मदा जी जैसे पवित्र नदियों का अस्तित्व है ऐसा हम भाव मन में रखेंगे। कलश को बाहर से अब गंध, अक्षत और फूल अर्पण कीजिए।
कलशावाहित देवताभ्यो नमः, सकल पूजार्थे गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि।
अब अगर पूजा के लिए शंख उपलब्ध है तो उसे जल से धोइए। बाद में शंख को जल से भरकर यजमान के दाई तरफ यानि भगवान की बाई तरफ सुयोग्य जगह पर रखें। शंख रखने के समय यह बात ध्यान में रहें कि शंख को उसकी योग्य बैठक पर रखें। अगर पूजा में हमेशा उपयोग होने वाली बैठक अपने पास ना हो तो ऐसे उपकरण पर रखें जहाँ से शंख ना हिले। शंख रखते समय यह भी ध्यान है कि शंख की जो बंद बाजू है वह यजमान की तरफ होनी चाहिए और खुली बाजू भगवान जी की तरफ होनी चाहिए।
शंखादौ चंद्र दैवत्यम, कुक्षौ वरुण देवता, पृष्ठे प्रजापतिश्चैव, अग्रे गंगा सरस्वती, शंख देवतायै नमः, सकल पूजार्थे गंध पुष्पम समर्पयामि।
शंख को गंध, फूल और तुलसी पत्र अर्पण कीजिए। ध्यान रहे शंख को अक्षत ना अर्पण करें। अब घंटी की पूजा करेंगे। घंटी को गंध, अक्षत, फूल अर्पण करके पूजा के बाद घंटी को भगवान जी के दाई तरफ यानि यजमान के बाई तरफ रखें। घंटी को बाह्य हाथ में पकड़कर बजाइए।
आगमार्थन्तु देवानां, गमनार्थन्तु रक्षसां, पूर्वे घंटारवं तत्र देवतार्चन सिद्धये, घंटा देव्यै नमः, सकल पूजार्थे गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि।
घंटी बजाइए। अब हम दीप पूजन करेंगे। पूजा के चौपाई के बाजू में जो समय दीप रखा है उसे गंध, अक्षत, फूल अर्पण कीजिए। अगर यजमान अकेले पूजा कर रहे हैं तो यजमान ने समय दीप को हल्दी कुमकुम अर्पण करना है। अगर धर्मपत्नी साथ में बैठी हो तो धर्मपत्नी ने समय दीप को हल्दी कुमकुम अर्पण करना है और दीप को नमस्कार करना है। यहाँ पर एक बात कहना उचित होगा कि हम दीप पूजन क्यों करते हैं। दीप यह प्रकाश का प्रतीक है। और पृथ्वी आप तेज वायु और आकाश यह जो पंचतत्व माने गए हैं उसमें दीप यह तेज तत्व का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए हम इस पूजा में दीप के रूप में तेज तत्व का पूजन करते हैं। इसे हम यह भाव मन में रखते हैं कि दीप पूजन से मन का अंधकार दूर हो जाए और हमारा जीवन प्रकाशमय हो जाए।
भो दीप ब्रह्म रूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययाः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च सर्वार्थांश्च प्रयच्छ मे दीप देवतायै नमः। सकल पूजार्थे गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि, हरिद्रां कुंकुमं सौभाग्य द्रव्यं समर्पयामि, नमस्करोमि।
अब जिस कलश की हमने कुछ समय पहले पूजा की है उस कलश में रखे हुए जल का तुलसी पत्र उसमें भिगोकर उस तुलसी पत्र से हम खुद पर और पूरे पूजा साहित्य पर सिंचन करेंगे। यह क्रिया करने के पीछे यह भाव है केवल कलश पूजन के दरम्यान देवी देवता ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद और सामवेद यह चार वेद और सभी मंत्र नदियों का स्मरण और आवाहन करके यह जल बहुत पवित्र हो गया है और उस जल के सिंचन से सभी पूजा साहित्य और पूजा करने वाले भी पवित्र हो जाएंगे।
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाह्याभ्यन्तरशुचिः पूजाद्रव्याणि संप्रोक्ष्य आत्मानं च प्रोक्षयेत्।
तुलसी पत्र से फिर से खुद पर और पूरे पूजा साहित्य पर सिंचन कीजिए और सिंचन के बाद वह तुलसी पत्र चौपाई के ऊपर जो दूसरा कलश रखा है उसमें डाल दीजिए। अब हम पृथ्वी तत्व का पूजन करेंगे। पूजा के चौपाई पर जो कलश रखा गया है उसका विवरण और चित्र इस ध्वनि मुद्रण के साथ दिया गया है। उस कलश में जो वस्तुएं पूजा दरम्यान अर्पित करनी है वह पहले से ही उसमें डाल कर रख सकते हैं ताकि जब पृथ्वी और वरुण तत्व का पूजन होगा तभी यजमान को पूजा करने में सुविधा होगी और जब भी उपचार के दौरान समय आए तो कलश को हाथ लगाकर वह वस्तुएं अर्पण कर रहे हैं ऐसा भाव यजमान मन में लाइए। अर्थात जिस किसी को पूजा के दरमियान उपचार के समय ही सब वस्तुएं अर्पण करनी ही इच्छा हो तो यजमान उस समय भी वह अर्पण कर सकता है। पूजा के चौपाई के ऊपर चावल का अष्टदल बनाइए, उस पर चांदी तांबा या अन्य कोई भी धातु का एक कलश रखे। उस कलश को बाहर की तरफ से लाल गंध जो कि कुमकुम को पानी में मिलकर जो बनाया जाता है वह गंध पांच जगहों पर लगाइए। इस कलश में रखा हुआ पानी वरुण देवता मानकर उसकी पूजा करनी है। वरुण देवता की पूजा के बाद उसमें आम की टहनी डालनी है। टहनी इस तरह रखनी है कि इसमें टहनी की डंठल कलश के भीतर जानी चाहिए और पत्ते बाहर रहने चाहिए। अगर आम की टहनी ना मिले तो उसकी जगह पर तांबूल के पत्ते और अगर वह भी ना मिले तो उसके जगह पर प्लास्टिक के पत्ते भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। यहाँ पर एक बात खास तौर पर ध्यान में रखनी है कि आम के तांबूल के या फिर प्लास्टिक के भी पत्ते कलश में रखते समय पत्तों की डंठल कलश में ही होनी चाहिए और पत्तों की जो शिरा होती है वह नीचे की तरफ और पत्ते का मैदान का भाग ऊपर की तरफ होना चाहिए। इन पत्तों का ना सिर्फ पूजा अंतर्गत उपचार में महत्व है पर इससे यह व्यावहारिक लाभ होता है कि पत्तों की वजह से पूजा के कलश का सौंदर्य निखरता है और दूसरा व्यावहारिक लाभ ऐसे होता है कि पत्तों के ऊपर जो तामन रखा जाता है वह अपनी जगह से हिलता नहीं। पृथ्वी तत्व का पूजन करने के समय हम जमीन को हाथ लगाकर पृथ्वी तत्व की पूजा करते हैं। अब यहाँ एक शंका उपस्थित होती है कि जो लोग इमारतों के ऊपर वाले मंजिलों में रहते हैं वह पृथ्वी तत्व का पूजन कैसे कर सकते हैं। यह शंका योग्य है। उसका उत्तर ऐसा है कि ये हमारे घर की जो फर्श है उसे उपचार दरमियान पृथ्वी तत्व मानकर स्मरण और पूजा की जाती है, तो उससे भी यही लाभ मिलता है जो प्रत्यक्ष भूमि को स्पर्श करके मिलेगा। अब हम पृथ्वी तत्व का पूजन स्मरण और हस्तस्पर्श करेंगे। उसके लिए हमारी हाथ की उंगलियों के अग्रों का भूमि को स्पर्श करना है। उसके लिए हाथ के पंजे ऊपर की दिशा की तरफ होने चाहिए और सिर्फ अग्रों का स्पर्श भूमि को होना चाहिए।
सर्वेषामाश्रया भूमिर् वराहेण समुद्रता अनंत सस्य रात्रियातां नमामि वसुंधराम।
अब पूजा की चौपाई के ऊपर कलश के नीचे जो चावल रखे हैं उनको जैसे भूमि को स्पर्श किया वैसे ही हाथ की उंगलियों के अग्रों का स्पर्श करना है।
यासामाप्यायक सोमो राजा या शोभना स्मृता औषध्य प्रक्षिपाम्यत्र ताद्य कलशार्चने।
अब कलश की स्थापना करने के पहले कलश की प्रार्थना करनी है।
कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदोथ यजुर्वेद सामवेदोषयथर्वण अंगैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी तथा आयान्तु देव पूजार्थं दुरितक्षयकारकाः।
यहाँ पर एक बार याद दिला देना जरूरी है कि हम जो उपचार करने जा रहे हैं उसमें जो आवश्यक वस्तुएं अर्पित करनी है वह पहले से ही कलश में डालकर रखी हैं। जब भी मंत्र का उच्चारण करके उपचार के दौरान वस्तु अर्पित करने का समय आए तो कलश को हाथ लगाकर वह वस्तुएं अर्पण कर रहे हैं ऐसा भाव यजमान मन में लाएं। अर्थात जिस किसी को पूजा के दरमियान उपचार के समय ही सब वस्तुएं अर्पण करनी हैं तो यजमान उस समय भी यह कार्य कर सकता है। एक आचमनी भरकर जल कलश में डालिए।
गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी कुंभेस्मिन् संजलिं कुरु।
अब कलश में गंध अक्षत फूल हल्दी कुमकुम दूर्वा बेल और तुलसी पत्र अर्पण करता है।
मलयाचल संभूतम घनसारम मनोहरम हृदयानंदनं दिव्यम चंदनम प्रक्षिपाम्यहम् त्वं दूर्वे मृत जन्मासि वंदितासि सुरैरपि सौभाग्य संतति करी सर्वकार्येषु शोभना।
अब कलश में आम की टेहनी रखनी है। टेहनी कैसे रखनी है उसकी सूचना पहले ही दी गई है, उसके अनुसार रखनी है।
अश्वत्थोदुम्बर प्लक्ष चूतन्य ग्रोथ पल्लवा पंचभंगा इति ख्याता सर्वकर्म सुशोभना।
अब कलश में सुपारी और सिक्का अर्पण कीजिए।
फलेन फलिसं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं कलशेस्मिन् क्षिपामीदं सर्वकर्म फलप्रदं हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनंतपुण्यफलदमतःशान्तिं प्रयच्छमे।
अब हम कलश में अक्षत अर्पण करके वरुण देवता का आवाहन करना है।
पाशहस्तञ्च वरुणं यादसां पतिमीश्वरं आवाहयामि यज्ञेस्मिन् पूजनार्थं नमामि तम् अस्मिन् कलशे वरुणाय नमः वरुणं सांगं सपरिवारं सायुधं सशक्तिगं आवाहयामि।
इसके बाद अब हम वरुण देवता की पूजा करेंगे। पूजा करने के लिए उपचार दरमियान हम सभी वस्तुएं कलश के सामने अर्पण करेंगे। इस उपचार की शुरुआत गंध, अक्षत फूल और हल्दी कुमकुम अर्पण करके करेंगे। पहले गंध लगाइए।
वरुणाय नमः, विलेपनार्थे चंदनम समर्पयामि।
अक्षत अर्पण कीजिए।
वरुणाय नमः, अलंकारार्थे अक्षतान् समर्पयामि।
हल्दी कुमकुम अर्पण कीजिए।
वरुणान्ये नमः, हरिद्रां कुमकुमं सौभाग्य द्रव्यम समर्पयामि।
फूल अर्पण कीजिए।
वरुणाय नमः, पूजार्थे कालोद्भव पुष्पम समर्पयामि।
अब दाई हाथ से धूप या अगरबत्ती और दीप दिखाइए और बाई हाथ से घंटी बजाइए।
वरुणाय नमः, धूपम समर्पयामि। वरुणाय नमः, दीपं दर्शयामि।
श्री गणपति जी के पूजा के दौरान जो गुड़, खोपरा या पेढ़ा या और कोई मिठाई का भोग चढ़ाया जाता उसे ही वरुण देवता को अर्पण कर सकते हैं, चाहे तो दूसरा भी अर्पण कर सकते हैं।
वरुणाय नमः, नैवेद्यार्थे अंशतः गुड़खाद्य नैवेद्यम समर्पयामि।
हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए।
प्राणाय नमः, पानाय नमः, व्यानाय नमः, उदानाय नमः, समानाय नमः, ब्रह्मणे नमः।
प्रसाद के बाजू से एक बार फिर जल को मंडलाकार सिंचन कीजिए।
प्राणाय नमः, पानाय नमः, व्यानाय नमः, उदानाय नमः, समानाय नमः, ब्रह्मणे नमः।
वापस बाएं हाथ से आचमनी में पानी लेकर दाएं हाथ के ऊपर से उसे हाथ धोने की प्रक्रिया करते हुए तामन में चार बार पानी छोड़ देना है।
उत्तरा पोषणम समर्पयामि, हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि, मुख प्रक्षालनम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि।
वरुण देवता को गंध और अक्षत अर्पण कीजिए। अब पूजा की चौपाई के ऊपर जो चार बीड़े रखे हैं उसमें से यजमान की तरफ से सबसे दाई ओर से दूसरा बीड़ा रखा है उसे वरुण देवता को अर्पण करेंगे। उसके लिए आचमनी से एक बार थोड़ा जल उस बीड़े पर छोड़ दीजिए।
वरुणाय नमः, मुखवासार्थे पूगी फलतांबूलम समर्पयामि। कृतपूजा सांगता सिद्ध्यर्थम सुवर्ण पुष्प दक्षिणाम समर्पयामि।
अब वरुण देवता को गंध, अक्षत फूल अर्पण कीजिए।
वरुणाय नमः, मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि, नमस्करोमि।
वापस बाएं हाथ से आचमनी में पानी लेकर दाएं हाथ के ऊपर से उसे हाथ धोने की प्रक्रिया करते हुए दामन में छोड़ देना है।
अनेन कृत पूजनेन वरुण प्रियतां मम तत्सद् ब्रह्मार्पणमस्तु।
यहाँ पर शंख घंटी पूजन, कलश पूजन और पृथ्वी आप तेज तत्व पूजन समाप्त हुआ।